नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे में स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया। देश में 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड 3,322 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। लेबनान में ताजा इजरायली हमलों में 51 लोग मारे गए और मकाओ ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल के पहले दौर में इजरायल के डेनियल डोबोविंको को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में 54% से अधिक मतदान की खबर है। प्रदेश में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, मतदान शांतिपूर्ण रहा। प्रमुख उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय जनता पार्टी के रविन्द्र रैना और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए थे।
जम्मू कश्मीर के 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुआ। चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से से किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की थी। इस बीच अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस समेत 15 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में विधानसभा की चल रही प्रक्रिया को देखने के लिए बड़गाम और श्रीनगर जिले में विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने लाल चौक विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक मतदान केंद्र का भी दौरा किया, जिसका प्रबंध पूरी तरह से महिला मतदान कर्मचारियों द्वारा किया गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक आज प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पक्ष में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के अंतर्गत हरियाणा ने उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में विश्व में भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। पूरी दुनिया में ये विश्वास है कि भारत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त है और तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में अगर कोई देश सबसे तेजी से प्रगति करेगा तो वो भारत है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।
आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। प्रस्तुत है भिवाणी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तोशाम विधानसभा क्षेत्र का प्रोफाइल।
तोशाम बंसीलाल परिवार का गढ़ इस बार परिवार के भीतर ही राजनीतिक मुकाबला देख रहा है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार कहे जाने वाले दिव्यांगत मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते पोतियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी अपनी कचेरी बहन भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पहली बार भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ेंगी। जननायक जनता पार्टी के राजेश भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह और बीएसपी के ओम सिंह व बीजेपी के बागी नेता शशि रंजन परमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार मैदान में हैं। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल ने देश की युवा शक्ति को बड़े सपने देखने के लिए पंख दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का असर दिखाता है कि भारत अजेय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया की छाप सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है। उन्होंने कहा कि 2014 में पूरे देश में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं और आज ये संख्या 200 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में उपयोग किए जाने वाले 99% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया हैं और देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। रक्षा उत्पादन निर्यात 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 85 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जीवंत खिलौना उद्योग की आवश्यकता के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे। वे 22,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जिला अदालत से स्वरगेट तक की मेट्रो ट्रेन को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री देश को सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप लगभग 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित करेंगे। इन्हें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्वदेश में ही निर्मित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत अब विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक निवेश की दृष्टि से भी पसंदीदा देश है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दूसरे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और अगले दशक में इसकी विकास दर 8% रहने की संभावना है। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र आकार ले रहे हैं। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे। श्री धनखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।
भारत इज एमर्ज्ड एज द मोस्ट बायंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट इज नाउ फेवरेट ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी विद एन इकोसिस्टम ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी ऑल प्रवेसिव इन इंडिया। Undoubtedly, we are set to regain our pristine glory. India is now a global happening place, and Uttar Pradesh is bubbling with activity. Activity in every sector, infrastructure, growth, industry, and innovation.
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonyaya.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है।
आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें।
आवेदन 30 सितंबर 2024 तक।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण MUDA को भूमि आवंटन मामले में आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया है। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मैसूरु लोकायुक्त पुलिस को जांच करने और 24 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। ये मामला आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की एक शिकायत पर आधारित था। विशेष अदालत का यह फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा MUDA द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को 14 सालों के आवंटन में अनियमितताओं पर सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। उच्च न्यायालय ने MUDA मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अंतर्गत जांच की मंजूरी दी थी। वर्ष 2023-24 के दौरान देश का कुल खाद्य अनाज उत्पादन 3,322 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। वर्ष 2022-23 की तुलना में ये 26 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए कृषि फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी करते हुए ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया है कि चावल, गेहूं और श्रियन यानी मोटे अनाज के अधिक उत्पादन के कारण उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। चावल का कुल अनुमानित उत्पादन 1378 लाख मीट्रिक टन बताया गया है, जो वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन है। गेहूं का उत्पादन 1132 लाख मीट्रिक टन से अधिक है, जो एक रिकॉर्ड है। श्री अन्न का अनुमानित उत्पादन 175 लाख मीट्रिक टन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट तैयार करने और डेटा विश्लेषण के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को एकीकृत करने के लिए काम किया जा रहा है। 16वें एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एएसओएसएआई में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मुर्मू ने कहा कि सीएजी ने क्षमता निर्माण पर कई पहल की है और सभी सुझावों को हितधारकों के साथ साझा करने के लिए लेखा परीक्षकों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री मुर्मू ने कहा कि डिजिटल ऑडिट को विभिन्न देशों द्वारा अपनाया जा रहा है और ये चुनौती के समय प्रमुख भूमिका निभाता है।
The digital audit is the in thing because in all crisis most of the countries they have been adopting the digital technologies very rapidly. So we have to adopt that kind of technology so that we can on real time basis we will be able to see how these activities of the governments which we are doing manually in our audit we should also be able to that digitally.
इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान और बेक्का क्षेत्र पर हवाई हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 51 लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के उपनगरीय क्षेत्रों में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइलों से हमले किए हैं। हाल ही के दिनों में हिजबुल्ला और इसराइली सेना के बीच झड़प में तेजी आई है। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल स्थित सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से कई हमले किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वे वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। मकाओ ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने इसराइल के जो बोनको डेनिल को 21-14, 21-15 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले दौर में उनका मुकाबला भारत की आयुष शेट्टी से होगा। महिला सिंगल्स में तस्नीम मीर भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं महिला डबल्स में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। अब प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना ताइवान की लिन चेचुन और तेंग चुन हुन की जोड़ी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की चेस ओलंपियाड में स्वर्ण जीतने वाली महिला और पुरुष टीम से अपने निवास पर मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने विजेता टीम को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। इससे पहले भारत की चेस ओलंपियाड में स्वर्ण जीतने वाली महिला और पुरुष टीम के आज दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र।
सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज सर्वकालिक स्तर को छुआ। सेंसेक्स 255 अंक की बढ़त के साथ 85,169 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 63 अंक की वृद्धि के साथ 26,004 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 60 पैसे मजबूत होकर 83.60 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के भाव $73.71 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे में स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया। देश में 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड 3,322 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। लेबनान में ताजा इजरायली हमलों में 51 लोग मारे गए हैं और मकाओ ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल के पहले दौर में इजरायल के डेनियल डुबोवेंको को हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।